पृष्ठ संख्या 34, षष्ठ बिंदु, परमेश्वर, फरिश्ते, शैतान। दुनिया के सारे धर्म प्रायः सारे पदार्थों को दो श्रेणियों में विभक्त करते हैं, अर्थात जड़ और चेतन। जड़ का वर्णन स्थान स्थान पर पाठक स्वयं पढ़ेंगे, यहाँ चेतन का वर्णन किया जाता है। चेतन के भी दो भेद हैं, ईश्वर और जीव। जीवों में ही फरिश्ते शैतान भी हैं। पृष्ठ संख्या 35, ईश्वर। ईश्वर को कुरान ने सृष्टि का कर्ता, धर्ता, हर्ता माना है, जैसा कि उसके निम्न उदाहरणों से मालूम होगा। वह ईश्वर जिसने भूमि में जो कुछ है सबको तुम्हारे लिए बनाया, 2:4:9। उसने सचमुच भूमि और आकाश बनाया, मनुष्य का शूद्र वीर्य बिंदु से बनाया। उसने पशु बनाए जिनसे गर्म वस्त्र पाते तथा और भी अनेक प्रकार के लाभ उठाते हो एवं उन्हें खाते हो, 16:1-5। वह तुम्हारा ईश्वर सब चीजों का बनाने वाला है, उसके सिवाय कोई पूज्य नहीं, 4:7-2। ईश्वर सब चीजों का सृष्टा तथा अधिकारी है, 39:6-10। निस्संदेह ईश्वर भूमि और आकाश को धारण किए हुए है कि वह नष्ट न हो जाएं, 35:5-4। जो परमेश्वर मारता और जिलाता है, 53:3-12। ईश्वर बड़ा दयालु है, वह अपराधों को क्षमा कर देता है। निस्संदेह तेरा ईश्वर मनुष्यों के लिए उनके अपराधों का क्षमा करने वाला है, 13:1-6। आस्तिकों ही पर नहीं, फरिश्तों पर भी। इस बात में हे मोहम्मद, तेरा कुछ नहीं, चाहे वह ईश्वर उन काफिरों को क्षमा करे या उन पर विपद डाले यदि वह अत्याचारी है, 3:13-8। ईश्वर सत्य है, परमेश्वर सत्य है, 31:3-11। ईश्वर का न्यायकारी होना इस प्रकार कहा गया है, कयामत के दिन हम ठीक तौलेंगे, किसी जीव पर कुछ भी अन्याय नहीं किया जाएगा, चाहे वह एक सरसों के बराबर ही लाए हैं, किंतु हमारे पास पूरा हिसाब रहेगा, 21:4-6। निम्न वाक्य के अनेक ईश्वरीय गुण बतलाए गए हैं। परमेश्वर जिसके सिवाय कोई ईश्वर नहीं, जीवन और सत्य है, उसे नींद या औंग नहीं आती। जो कुछ भूमि और प्रकाश में है उसी के लिए है। कौन है जो उसकी आज्ञा बिना उसके पास सिफारिश करे? वह जानता है जो कुछ उनके आगे या पीछे है, वह कोई बात उसे छिपा नहीं सकते, सिवाय इसके कि जिसे वह चाहे विशाल भूमि और प्रकाश की कुर्सी, जिसकी रक्षा उसे नहीं थकाती, वह उत्तम और महान है, 2:34-2। परमेश्वर माता पिता स्त्री पुत्रादि रहित है, न वह किसी से पैदा हुआ है, न उससे कोई पैदा है, 112:1-3। ईश्वर के मार्ग में खर्च करने का वर्णन इस प्रकार है, कौन है जो परमेश्वर को अच्छा कर्ज दे, वह उसे कई गुना बढ़ाएगा, 2:32-3, 57:2-1। निस्संदेह दाता स्त्री पुरुषों ने परमेश्वर को अच्छा कर्ज दिया, उनका वह दुगुना होगा और उनके लिए इसका अच्छा बदला है, 57:2-8। पृष्ठ संख्या 36। ईश्वर का रूप। कितने ही लोग इस्लाम में भी ईश्वर को साकार मानते हैं और इसके लिए निम्न कुरान वाक्यों का प्रमाण देते हैं। वह परमेश्वर जिसने 6 दिन में भूमि और आकाश को बनाया और फिर अर्श पर विराजमान हुआ, 57:1-4, 10:1-3, 13:1-2, 32:1-4। साकार ईश्वर कृपालु परमेश्वर अर्श पर विराजमान हुआ, उसका अर्श जल पर है, 20:1-5। जो फरिश्ते अर्श को उठाए हैं और जो उसके पास अपने परमेश्वर की स्तुति करते हैं, 40:1-7। और जिस कयामत के दिन फरिश्ते पास में रहेंगे और उनमें से 8 अपने ऊपर परमेश्वर का अर्श उठाएंगे, 69:1-17। जिस कयामत के दिन परमेश्वर की पिंडली खोली जाएगी और लोग प्रमाण के लिए बुलाए जाएंगे लेकिन वह काफिर समर्थ न होंगे, 68:2-9। यहाँ अर्श ईश्वर के सिंहासन का नाम है, अर्श जल पर है से पुराणों के शेष शाही ईश्वर का स्मरण आता है। इस मत के मानने वाले ईश्वर को 7वें आसमान आकाश में सिंहासन के ऊपर बैठा मानने वाले हैं, जहाँ से वह फरिश्तों के द्वारा सारी सृष्टि पर शासन करता है। उनका कहना है, यदि ईश्वर सब जगह होता तो हजरत मोहम्मद साहब के पास कुरान को जिब्रील के द्वारा भेजने की क्या आवश्यकता थी। परमेश्वर मूत्रपुरी शादी घृणित स्थानों में नहीं रहता, परमेश्वर निराकार। कुरान में यह सिद्धांत भी भली भांति प्रतिपादित किया गया है कि ईश्वर अद्वितीय, एक, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, अनुपम, अति समीप है। निम्न वाक्य इस आशय को दर्शाते हैं, निस्संदेह तुम्हारा ईश्वर एक परमेश्वर है, उसके सिवाय कोई पूजनीय नहीं, वह कृपालु और क्षमाशील है, 2:19-11। ईश्वर गवाही देता है कि उसके सिवाय कोई पूजनीय नहीं। फरिश्ते तथा ज्ञानी जन इस पर दृढ़ हैं कि उसके सिवाय कोई पूजनीय नहीं जो शक्तिमान एवं ज्ञानी है। 3:8-9 वह आदि है, वह अंत है, वह बाहर है, वह भीतर है, वह सब चीजों का जानकार है। 57:1-3 निश्चय भगवान अपने ज्ञान से सब चीजों को घेरे हुए है। 65:2-5 काफिर नास्तिक भगवान की मुलाकात की संदेह में है, वह सर्वव्यापक है। 51:6-10 उस ईश्वर के सदृश कोई चीज नहीं, मैं ईश्वर चलती नाड़ी से भी समीप हूँ। ईश्वर को एक देशी और साकार मानने वाले ऊपर आगे सर्वव्यापक आदि विशेषणों का ज्ञान द्वारा सर्वव्यापक अर्थ करते हैं। इसी प्रकार सर्वव्यापकवादी अर्श का अर्थ आसन शासन करते हैं। ऐसे ही और अर्थों में भी परिवर्तन करते हैं, किंतु इसमें संदेह नहीं कि पुराने भाष्यकारों और हदीस ग्रंथों ने पृष्ठ संख्या 37 किसी एक पक्ष को सर्वथा त्यागा और दूसरे पक्ष को सर्वथा अपनाया नहीं है। इस साकारवाद के आधार पर ही महात्मा मोहम्मद की मियराज यात्रा की अनेक कथाएं उपर्युक्त ग्रंथों में वर्णित हैं, जिनको यहाँ उद्धृत करना उचित नहीं प्रतीत होता। मियराज संबंधी आयत एकादश बिंदु में दी गई है। फरिश्ते देवदूत जिस प्रकार पुराणों में परमेश्वर के बाद अनेक देवता भिन्न भिन्न काम करने वाले माने जाते हैं, यमराज मृत्यु के अध्यक्ष, इंद्र वृष्टि के अध्यक्ष इत्यादि, इसी प्रकार इस्लाम ने फरिश्तों को माना है। पहले फरिश्तों के संबंध में कुरान में आए हुए कुछ वाक्य दे देने पर इस पर विचार करना अच्छा होगा, इसलिए यहाँ वे वाक्य उद्धृत किए जाते हैं। जब हमें परमेश्वर ने फरिश्तों को आदम के लिए दंडवत करने को कहा तो सबने दंडवत की, किंतु इब्लीस ने इनकार किया, घमंड किया और वह नास्तिकों में से था। 2:4-5, 20:7-1 जब हमने फरिश्तों को दंडवत करने को कहा तो इब्लीस के अतिरिक्त सबने किया। इब्लीस बोला, क्या मैं उसे दंडवत करूं जो मिट्टी से बना है? 17:7-1 जब हमने फरिश्तों को कहा आदम को दंडवत करो तो उन्होंने दंडवत की, किंतु इब्लीस जो जिन्नों में से था ने न किया। 20:116 ऊपर के वाक्यों में फरिश्तों का वर्णन आया है। भगवान ने आदम मनुष्य जाति के आदि पिता को बनाकर उन्हें आदम को दंडवत करने को कहा। सबने वैसा किया किंतु इब्लीस ने न किया। यह इब्लीस उस समय फरिश्तों में सबसे ऊपर देवेंद्र था। तृतीय वाक्य में उसे जिन्न कहा गया है। इससे ज्ञात होता है कि फरिश्ते और जिन्न एक ही हैं या जिन्न फरिश्तों के अंतर्गत ही कोई जाति है। इब्लीस ने यह कहकर आदम को दंडवत करने से इनकार किया कि वह मिट्टी से बना है। अतः मालूम पड़ता है कि फरिश्तों की उत्पत्ति किसी और अच्छे पदार्थ से हुई है। अन्यत्र इब्लीस के वाक्य से ही मालूम हो जाता है कि उनकी उत्पत्ति अग्नि से हुई है। अपने भक्तों की रक्षा के लिए ईश्वर इन फरिश्तों को भेजते हैं, यथा फरिश्तों से सहायता। हे ईमान वालों, अपने ऊपर ईश्वर की कृपा को स्मरण करो। जब तुम्हारे ऊपर शत्रुओं की फौज आई तो हमने इन शत्रुओं की फौज पर आंधी भेजी तथा एक फरिश्तों की फौज भेजी जिसे तुमने नहीं देखा। 32:2-1 यह एक युद्ध के संबंध में वर्णन है, जबकि शत्रुओं की संख्या मुसलमानों से कई गुना थी। उस वक्त ईश्वर का कोप आंधी रूप से उनके ऊपर पड़ा और ईश्वर ने मुसलमानों की सहायता के लिए फरिश्तों की फौज भेजी। यह फरिश्ते आस्तिकों के पास आते हैं जो कहते हैं कि हमारा मालिक परमेश्वर है और इस पर दृढ़ हैं। उनके ऊपर फरिश्ते उतरते हैं और कहते हैं, डरो नहीं, अफसोस न करो और स्वर्ग का शुभ संदेश सुनो जिसके मिलने के लिए तुम्हें वचन दिया गया है। 41:4-5 पृष्ठ संख्या 38 प्रत्येक मनुष्य के शुभाशुभ कर्मों के लेखक तथा रक्षक फरिश्ते हैं जिनके विषय में कहा है, निस्संदेह तुम्हारे ऊपर रखवाले हैं कि रामन कातिबीन जो कुछ तुम करते हो उसे वह जानते हैं। 82:1-10-12 हदीस और भाष्य तफसीर ग्रंथों में आता है कि प्रत्येक मनुष्य के दोनों कंधों पर किरामन और कातिबी यह दो फरिश्ते बैठे रहते हैं, जिसमें से एक उसके सारे सुकर्मों को और दूसरा सारे दुष्कर्मों को लिखता रहता है। फरिश्तों के पंख इन फरिश्तों के पर भी होते हैं। प्रशंसा परमेश्वर के लिए है जो 2, 3, 4 पंख वाले फरिश्तों को दूत बनाता है। 35:1-1 कुछ फरिश्तों का नाम इस वाक्य में दिया है। कह हे मुहम्मद, निस्संदेह जिसने ईश्वर की आज्ञा से तुझ पर इस कुरान को उतारा उस जिब्रील का जो शत्रु है, जो ईश्वर उसके रसूलों दूतों ऋषियों का फरिश्तों का जिब्रील का मिकाल का शत्रु है, निस्संदेह भगवान ऐसे काफिरों नास्तिकों का शत्रु है। 2:12-1-2 ऊपर आए दोनों फरिश्तों में जिब्रील जिब्राइल सब फरिश्तों का सरदार है। मिकाइल मृत्यु का फरिश्ता अर्थात यमराज है, जिसका काम आयु पूरा होने पर सबको मारना है। ऐसे ही हदीसों में और भी अनेक फरिश्तों के नाम और काम बतलाए गए हैं। इसराफील अपना नरसिंहा जब बजाएंगे तब महाप्रलय होगी। शैतान पापात्मा। फरिश्तों के अतिरिक्त कुरान में एक और प्रकार के भी अदृश्य प्राणी कहे गए हैं, जो सब जगह आने जाने में फरिश्तों के समान ही हैं, किंतु वह शुभ कर्म से हटाने और अशुभ कराने के लिए मनुष्यों को प्रेरणा करते हैं। इन्हें शैतान कहते हैं। हमने इस पुस्तक में उनके लिए पापात्मा शब्द लिखा है। शैतानों में सबका सरदार वही इबलीस है, जिसका के नाम ऊपर आया है। शैतान के विषय में कहा है, यह केवल शैतान है जो तुम्हें अपने दोस्तों से डराता है। 3:18-4। शैतान किस प्रकार मनुष्य को अशुभ कर्म की ओर प्रेरित करता है, उसको इस वाक्य में कहा गया है। शैतान उनके कर्मों को संवार देता है तथा कहता है, अब कोई मनुष्य तुम्हें जीत नहीं सकता, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। किंतु जब दोनों पक्ष आमने सामने आते हैं तो वह मुंह मोड़ लेता है और कहता है, मैं तुमसे अलग हूँ, मैं निस्संदेह देखता हूँ जिसे तुम नहीं देखते, और परमेश्वर पाप का कठोर नाशक है। 8:6-4। इसीलिए कहा है, कह मेरे शरण के प्रलोभनों से मैं तेरी शरण आया हूँ। 23:6-5। काम करा चुकने पर शैतान क्या चाहता है, यह इस वाक्य में है। पृष्ठ संख्या 39। काम समाप्त हो जाने पर शैतान ने कहा, निस्संदेह तुमसे ईश्वर ने ठीक प्रतिज्ञा की थी और मैंने तुमसे प्रतिज्ञा की फिर तोड़ दी। मेरा तुम पर अधिकार नहीं इसके सिवाय कि मैंने पुकारा और तुमने मेरी बात स्वीकार की। सो मुझे दोष मत दो, अपने आप को दोष दो। मैं न तुम्हारा सहायक हूँ और न तुम मेरे सहायक। 14:4-1। इबलीस का स्वर्ग से निकाला जाना। शैतान भूमि तक ही नहीं आकाश तक का धावा मारते हैं। कहा है, निस्संदेह हमने आकाश में बुर्ज बनाए और देखने वालों के लिए उसे संवारा और सब दुष्ट शैतानों से उसकी रक्षा की, उसके अतिरिक्त कि जिसने सुनने के लिए चोरी की फिर प्रत्यक्ष तारा ने उसका पीछा किया। 15:2-1-3। यद्यपि शैतान को आकाश की ओर जाना मना है, किंतु चोरी से कभी कभी कोई छिप कर आकाश की बात जानने के लिए चला जाता है। यही आकाश के टूटते तारे या उल्का हैं। शैतान के अनुयायी मनुष्यों का लक्षण इस प्रकार का है। मनुष्यों में जो बिना जाने परमेश्वर के विषय में विवाद करते हैं, वह सब बागी शैतान का अनुगमन करते हैं। 22:1-2। शैतानों के सरदार इबलीस का स्वर्ग से निकाला जाना कुरान में इस प्रकार वर्णित है, जब हमने तुम्हें पैदा किया फिर तुम्हारी सूरत गढ़ी, फिर फरिश्तों ने कहा आदम को दंडवत करो तो उन्होंने दंडवत की, किंतु इबलीस प्रणाम करने वालों में न था। दुष्ट शैतान। परमेश्वर ने कहा, जब मैंने तुझे आज्ञा दी तो किसने तुझे मना किया? इबलीस बोला, मैं उससे अच्छा हूँ, मेरी उत्पत्ति अग्नि से और उसकी मिट्टी से। परमेश्वर ने कहा, निकल जा इस स्वर्ग से, क्योंकि यह ठीक नहीं कि तू इसमें रहकर गर्व करे, सो निकल, तू शुद्र है। इबलीस बोला, देखना तब तक मुझे जिस दिन यह मनुष्य उठाए जाएंगे। परमेश्वर ने कहा, निस्संदेह तू प्रतीक्षा करने वाला है। इबलीस बोला, यतः तूने मुझे भरमाया, अतः अवश्य मैं उनके भटकने के लिए तेरे सीधे मार्ग पर खड़ा रहूंगा। फिर मैं जरूर उनके सामने पीछे दाहिने बाएं से आऊंगा और उन मनुष्यों में से बहुतों को तू कृतज्ञ न पाएगा। 7:2-11-17। दुष्ट शैतान का इतना भय है कि कहा गया है, जब तुम कुरान को पढ़ो तो दुष्ट शैतान से रक्षा पाने के लिए ईश्वर की शरण मांगो। 16:13-9। ऊपर फरिश्तों और शैतान के वर्णन पढ़ने पर भी जिज्ञासा हो सकती है। जिस प्रकार परमेश्वर के अनेक लक्षण वर्णित किए गए हैं, जैसे जीव का लक्षण बतलाया गया है, किंतु यही प्रश्न उस समय भी लोग महात्मा मोहम्मद से करते थे, जिसका उत्तर कुरान में निम्न शब्दों को छोड़कर और कुछ नहीं दिया गया। कुल्लरूहू मिनमरी रब्बी। कह कि जीव मेरे परमेश्वर की आज्ञा से है।